शांति। तो आज का विषय क्या है अभी का? हाँ, इंद्र अहिल्या प्रसंग। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं उद्धार करता हूं। किसका उद्धार करता हूं? अहिल्याओं का, गणिकाओं का, साधुओं का। तो कौन है ये अहिल्या जिनका बाबा उद्धार करता है, आज हम देखेंगे कि शास्त्रों के अंदर, क्योंकि बाबा ये सब उदाहरण कहां से देते हैं? शास्त्रों में ये आते हैं। और बाबा हमेशा कहते हैं, शास्त्रों में आटे में लूण के बराबर, नमक के बराबर कुछ तो सत्य है। तो क्या है इसमें, वो हम देखेंगे कि कहानी ऐसे आती है। अहिल्या की कहानी किसी ने सुनी है? सुनी है किसी ने? नहीं। हाँ, पत्थर बन गई, सिर्फ इतना पता है। हाँ, तो उसमें बताते हैं ना कि चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल में पढ़ के जब घर लौटे हैं तो विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए दशरथ जी के पास, क्योंकि विश्वामित्र जी वन में रहते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ संपन्न नहीं होता था। और कारण क्या था? राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। यज्ञ संपन्न होने से पहले ही यज्ञ को उजाड़ देते थे। तो यज्ञ की रक्षा हेतु वो पहुंचे दशरथ के पास कि मुझे आपके ये दो बालक दीजिए। खूब वार्तालाप चली, देना है नहीं देना है, लेकिन फाइनली तय हो गया कि ये बालक आप लेकर जाइए। वन में जाते हैं, तो वन में जाते हैं तो जो कर रहे थे यज्ञ में विघ्न खड़े, सुबाहु मारीच, उनको मारा है। फिर ताड़का का भी वध किया है। फिर और आगे बढ़ते हैं, अब जनकपुर मिथिलापुरी में जाने का समय हो रहा है, लेकिन वहां जाने से पहले ही ये आश्रम दिखता है, गौतम ऋषि का आश्रम। लेकिन उसकी कुछ अलग ही प्रकार की विशेषता है कि जिसको देखकर राम कहते हैं, ये कैसा आश्रम है, क्योंकि उस आश्रम में कोई हलचल नहीं, अर्थात कोई रहने वाले नहीं है, खाली पड़ा है। सिर्फ मनुष्यों से खाली नहीं पड़ा, पशु पंछी तक नहीं है वहां पे। और वहां पर जो पेड़ लगे हुए हैं वो भी सूखे पड़े हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनको पत्थर की शिला भी दिखाई पड़ती है। तो प्रश्न करते हैं राम जी, ये कैसा आश्रम है, ये क्या शिला है? और कहानी सुनाते हैं विश्वामित्र जी कि एक समय में ये आश्रम हरा भरा हुआ करता था, चहल पहल थी, जिंदगी की रंग रंगत थी यहाँ पे। उस समय यहाँ पे गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ अपना दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। काफी वर्षों तक अपना दाम्पत्य जीवन जिया और फिर अचानक उनके जीवन में एक घटना घटी। और वो घटना क्या घटी कि गौतम ऋषि अपने रोज के नियम प्रमाण भोर होते ही, क्योंकि उन दिनों में तो स्नान के लिए नदी में ही जाते थे, तो स्नान करने के लिए रोज का जो नियम था वो स्नान पर जाते थे गंगा में। और ये जो इंद्र था ये उसको नोटिस करता रहता था, क्योंकि इंद्र क्या है, उसको अहिल्या के प्रति आसक्ति थी। अहिल्या एक ऐसी स्त्री जो बहुत ही रूपवान है, जो बहुत ही सौंदर्य से भरी है, बहुत ही गुणवान है, तो सभी उसको पाने के लिए लालायित, देवताएं भी उसको पाने के लिए लालायित। ऐसी कहानी बताते हैं कि जो अहिल्या है वो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। ऐसे जैसे हम आप माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, ऐसे वो अहिल्या नाम की जो स्त्री दिखाई है वो मानस पुत्री है। किसकी? ब्रह्मा की मानस पुत्री है। और ब्रह्मा जी ने देखा कि इसकी सुंदरता पर सभी आकर्षित हो रहे हैं। इंद्र तो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहा था, तो मन में विचार आया कि अगर ये बुद्धि मतलब अहिल्या इंद्र का संग कर लेगी, इंद्र माना क्या, इंद्र माना क्या, हम लोग कहते हैं देवराज इंद्र, सुना है ऐसा शब्द। लेकिन अगर हम अपने बाबा के ज्ञान को देखें, हम बताते हैं कहानियों के अनुसार स्वर्ग के देवराज इंद्र मतलब देवताओं के भी राजा, लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया तो वहां पे कौन है स्वर्ग का राजा, बताया कभी देवराज इंद्र राजा है वहां का? बाबा के अनुसार स्वर्ग का राजा कौन है? लक्ष्मी नारायण है। लेकिन कहानियों में हम सुन रहे हैं देवराज इंद्र, तो ये फिर कौन सा स्वर्ग का ये राजा होगा? सोचने की बात है ना, कि इतना सारा रोज हम बाबा की मुरलियां सुन रहे हैं, हमको कहीं ये सुनने को नहीं मिला बाबा के मुखारविंद से कि स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र है। लेकिन कहानियों में हम सुनते हैं कि इंद्र देवराज है, स्वर्ग है, स्वर्ग का राजा है। इंद्रपुरी कहते हैं ना, मैंने सुना शायद चंद्रपुर को भी इंद्रपुरी कहते हैं, इंद्र नगरी कहते कहते हैं। मैंने नेट में देखा तो चंद्रपुर के भी लिए नाम आया, बाकी अमरावती के लिए तो है ही है, परंतु पता नहीं कि वो या तो विकिपीडिया जिसने लिखी होगी वो रॉन्ग होगा। तो हम देख रहे थे कि बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि स्वर्ग का राजा इंद्र है, हमेशा हम सुन रहे हैं लक्ष्मी नारायण वहां के राजा, और हमको भी लक्ष्य मिला हुआ है कि हम भी बने तो क्या बने, लक्ष्मी नारायण बने। कभी बाबा पूछ लेता है राम सीता कौन बनेगा, हाथ खड़ा करो, तो कोई हाथ नहीं खड़े करते हैं। हाँ, तो सबको पक्का है कि लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के राजा तो क्या महाराजा है, फिर ये देवराज इंद्र कौन है, तो सोचना नहीं पड़ेगा हमें कौन है। देखो देव शब्द का अर्थ होता है एक तो दिव्यता और एक दूसरा अर्थ होता है देना, है ना। हम कहते हैं ना कि देवता थे हम, माना देने वाले थे, और बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो लेवता बन गए, देवता की जगह लेवता। तो एक अर्थ देवता का है देना। तो जब देवराज इंद्र कह रहे हैं मतलब क्या होगा फिर? ये शरीर है, जीवन दो बातों से बना ना, आत्मा और शरीर। ज्ञान मिलने के बाद यही पता चला ना हमें कि शरीर ये जीवन माना दो सत्ताओं का योग, एक भौतिक एनर्जी और एक आध्यात्मिक एनर्जी, भौतिक एनर्जी माना शरीर और आध्यात्मिक एनर्जी माना आत्मा। तो इस भौतिक शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। आंख का विषय क्या है? दृश्य। कान का विषय क्या है? आवाज, साउंड, ध्वनि। जीभा का विषय स्वाद। नाक का विषय गंध। त्वचा का विषय, ये इंद्रियां, उनका जो विषय है अपने विषय से संबंधित डेटा किसको देती है? मन को देती है। मन क्या है? इंद्रियों का राजा है। अगर इंद्रियों के साथ मन का जुड़ाव नहीं हो तो मैं भले आपको यहां दिख रहा है कि मैं आपको देख रही हूं, पर मन मेरा कहीं और है तो मैं सचमुच आपको देख नहीं, ये आपका भ्रम है कि मैं आपको देख रही हूं। क्योंकि सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते, आंख के साथ उसके साथ उसका स्वामी जो इंद्रियों का जो स्वामी है मन, वो भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि इंद्रियां ये जो अपने अपने विषय से संबंधित डेटा है उसको किसको प्रोवाइड करना है? मन को प्रोवाइड करना है। तो इंद्रियां दे रही है किसको? मन को डेटा दे रही है, दृश्य से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, स्वाद से संबंधित, गंध से संबंधित, स्पर्श से संबंधित। ये सब डेटा मन के पास पहुंचता है, फिर मन क्या करता है? हम पहले दिन का लेसन जब कराते हैं या हमने जब किया स्वयं ने, तो हमें क्या बताया गया? आत्मा के पास तीन फैकल्टीज हैं। कहा कौन कौन सी तीन फैकल्टीज? तो कहा मन है, बुद्धि है और संस्कार है। तो फिर मन का काम हमें क्या बताया गया था? सोचना। और थोड़ा खुलासा करो, देखो मन का काम सोचना, बुद्धि का काम, और फिर बुद्धि ने जो निर्णय दिया उसको इंद्रियां करेगी ना, उसके बाद संस्कार पड़ेगा। फिर हमने कहा कि जो कार्य बार बार करेंगे वो संस्कार बन जाएगा, और जब एक बार कोई चीज संस्कार बन गई तो फिर सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, संस्कार वश हमसे होता रहता है, ये कहते हैं ना। लेकिन जब तक संस्कार नहीं बना है तब तक क्या होता है? कि माँ ने हमें सिखाया कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। मेरे सामने ऐसी स्थिति खड़ी हुई, सिचुएशन आई जहां मुझे कहा गया आपको यहां झूठ बोलना पड़ेगा। तो अंदर में मन ने बोला झूठ बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? मन क्या कर रहा है? क्योंकि हमने पहले पूछा ना मन क्या करता है, तो आपने बोला सोचना। ये अभी मन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? झूठ बोलूं कि नहीं बोलूं, चाय पियूं कि नहीं पीऊं, घूस लेऊं या नहीं लेऊं, गुस्सा करूं नहीं करूं। जब मन ऐसा बोलता है तो ये मन क्या कर रहा होता है, ये मन ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन है ना, या तो ये या तो ये या तो दोनों, इसको ही तो ऑप्शन बोले जाते हैं ना। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको चॉइस दी जा रही है। नहीं, वो जो कुछ जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें जो उत्तर्स होते हैं ना, ऑप्शन वाले होते हैं। मतलब चार पांच ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन पूछा गया, और उस चार पांच में से राइट वाले को आपको टिक करना है। तो मन क्या करता है, ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो ये जब मन बोल रहा था कि झूठ बोलूं नहीं बोलूं, ये किसको दे रहा था ये ऑप्शन? बुद्धि को दे रहा था। ये सिचुएशन है, ये ऑप्शन हो सकते कि बोला भी जाए, परंतु मन के पास फैसला लेने की अथॉरिटी नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है, डेटा तेरे पास आएगा, तू चाहे कितने ही ऑप्शन क्रिएट कर सकता है, कर दे। इसीलिए तो बोलते हैं ना, मन के पास क्रिएटिविटी है। यही तो बोलते हैं, मन के पास रचनात्मकता है, परंतु फैसला करने का अधिकार मन को नहीं मिला हुआ है। तो चूंकि उसको फैसला करने का अधिकार नहीं मिला है, तो ये किसके पास उसको ऑप्शन रखने पड़ेंगे? जिसके पास वो फैसला करने की अथॉरिटी है। तो ये जो हम कर रहे होते, सिचुएशन आई, किसी ने बोला झूठ बोलो, माँ ने तो बचपन से शिक्षा दी थी कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अभी ये सामने वाला मुझे कह रहा है आपको अभी झूठ बोलना ही पड़ेगा, इसी से बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, नहीं तो पूरा बात जो बिगड़ जाएगी उसका पूरा जिम्मा आपके सिर पे आएगा। तो अंदर में मन ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, बोलो कि नहीं बोलो, बोलो कि नहीं बोलो, और ऑप्शन बुद्धि को दे रहा है। और फिर बुद्धि डिसाइड करती है, और बुद्धि ने अगर बोला बोल दे, तो फिर मन बोल देगा झूठ। और फिर दोबारा सिचुएशन आई कुछ दिन के बाद, फिर मन ने फिर ऑप्शन क्रिएट किया, लेकिन पहली बार जितनी ऑप्शन क्रिएट किया था या जितनी देर तक उस पर सोच रहा था, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम। उस पहला लेसन में रिवाइज करा रही हूं, हमने आपको कहा ना, भट्टी में नया कुछ नहीं मिलेगा, रिवीजन होगा। हाँ, क्योंकि जो पढ़ाया उसी में से एग्जाम होने वाली है, नया सिलेबस नहीं आने वाला है। एग्जाम में जो पुराना सिलेबस है उसी को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ना, इसीलिए मुझे जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझना होगा ना। तो दूसरी बार उतना नहीं, तीसरी बार अगर सिचुएशन आई, क्योंकि बुद्धि क्या कर रही है, बुद्धि नेक्स्ट टाइम पूछते हैं तो बुद्धि उत्तर देती, पिछली बार झूठ बोला था तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था ना, इस बार भी बोल दे। तो ऐसा करते 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 फिर जब सिचुएशन 4, 5, 10, 12, 20, 21 बार हो गई, अब फिर सिचुएशन आई, अब मन ऑप्शन क्रिएट करता ही नहीं है, तो बुद्धि को फैसला देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इतनी बार जो किया था, क्योंकि संस्कार भी पढ़ाया ना हमको कि जो कर्म बार बार किया वो संस्कार बना, और एक बार कोई चीज संस्कार में चली गई, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं, बात आई और हम कर बैठेंगे, है ना। तो हम बात कर रहे थे देवराज इंद्र की। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। अर्थात मन ही क्या है? देवराज इंद्र है। अब ये कंटीन्यूअस डेटा लेके आता है विषयों से, मन के पास डेटा कंटीन्यूअस आता है और ये डेटा कंटीन्यूअस बुद्धि के सामने रखता है। कंटीन्यूअस हो रहा है ना हमारे साथ, तो बुद्धि के सामने डेटा रख देता है। और बुद्धि, जैसे कहा कि अगर हर बार किसी चीज के लिए वही वाला ऑप्शन चूज करती है तो संस्कार बढ़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, देवराज इंद्र बुद्धि स्वामिनी है मन की, लेकिन बार बार डेटा ला ला के, बार बार लुभा लुभा के देवराज इंद्र बुद्धि को क्या कर लेता है? अपने फेवर में ले लेता है। जबकि बुद्धि किसके फेवर, माना बुद्धि को किस न्याय किस आधार से देगी बुद्धि? जैसे पहली बार झूठ बोलने की बात आई तो मन ने बोला नहीं, मम्मी ने तो बोला था झूठ नहीं बोलना है। मतलब बुद्धि को पहले ट्रेनिंग किसी ने दी हुई है, वो ट्रेनिंग स्टोर्ड है और स्टोर्ड ट्रेनिंग के आधार से अभी प्रश्न उठ रहा है कि बोलो कि नहीं बोलो, बोलो कि नहीं बोलो। लेकिन अगर बुद्धि को ट्रेनिंग, जो माँ बाप की ट्रेनिंग मिलना ही धीरे धीरे बंद हो जाती है तो, और इधर से ये झूठ बोलने के लिए हमको उकसा रहे हैं तो वो ट्रेनिंग पूरी क्या हो जाती है? फेल होता है। नौकरी में जाते हैं, बहुत बार हमने देखा है, पहली बार जब नौकरी में जाते हैं तो बहुत साफ सुथरे विचारों के साथ जाते हैं, मैं तो पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत की इनकम लूंगा, कोई घूसखोरी में नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं सब कुछ होता है, होता जाता है ना सब कुछ, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग जो मिलती थी अभी वो ट्रेनिंग मिलना बंद हो गई है। तो इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जो है उसकी पुत्री है ये अहिल्या, ब्रह्मा की मानस पुत्री है अहिल्या। तो ब्रह्मा ने सोचा अगर इसको इंद्र का साथ मिलता रहेगा, इंद्र माना ही इंद्रियों का राजा और माना ही उसको क्या है, क्योंकि इतने विषयों की बात आती है तो भोगने की इच्छा होती है ना उसको, वाह क्या डिश बढ़िया थी, मैं तो कल भी खाऊंगा, थोड़ा सा रख लेता हूं, भोगने की इच्छा ना। तो इंद्र माना देवराज, इंद्र माना भोगी वृत्ति। तो अगर बुद्धि को भोगी वृत्ति का साथ मिलेगा तो उस भोगी माना इंद्र का भी सत्यानाश, बुद्धि का भी सत्यानाश। देखो होता यही है ना, इस शरीर के इंद्रियों से हम भोगों में लगे हुए हैं और उम्र कटती जाती है और इंद्रियां शिथिल पड़ती जाती है, होता है नहीं होता है। लेकिन भोग की वृत्ति उतनी ही मजबूत होती जाती है और इसलिए ब्रह्मा ने सोचा इसको भोगी वृत्ति इंद्र का साथ मिलेगा तो इंद्र तो खुद का भी सत्यानाश करेगा तो मेरी इस बेटी का भी सत्यानाश कर देगा, और इसलिए मैं इसको किसका साथ दूंगा? तो कहा गौतम ऋषि के साथ उसको जोड़ा उसने आरंभ में, क्योंकि अभी उसकी पुत्री है वो। आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो ट्यूशन या स्कूल भेजते हैं ना कि उसको ज्ञान मिले। तो गौतम माना क्या? यह यहाँ गौतम किस चीज का प्रतीक है? विवेक का प्रतीक है। गौतम विवेक, विवेक माना ही ज्ञान। ब्रह्मा की मानस पुत्री को विवेक का साथ दिया ताकि उस विवेक के सानिध्य में रह के उससे अच्छी ट्रेनिंग ट्यूशन पड़ेगी तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका पूरा ज्ञान उसको समझ में आएगा। गौतम ऋषि स्वयं योगी तपस्वी तेजस्वी संयमी, तो बुद्धि भी कैसी बनेगी? संयमी बनेगी। भोगी का साथ मिलेगा तो भोगी बन जाएगी। एक योगी तपस्वी संयमी का साथ मिलेगा तो संयमी बन जाएगी। तो उसके पास उसने उसको रखा क्योंकि उसको पता था इस पर नजर सबकी है, इसलिए उसने गौतम को दे दिया। और फिर जब देखा कि गौतम के पास इतना समय तक मेरी पुत्री रही लेकिन इसने कभी बुरी नजर इस पर नहीं रखी और इसलिए सोचा उचित वर तो इसके लिए यही होगा, तो उससे फिर उसकी शादी करा दी। शादी माना ही गठबंधन कि उसके साथ में रहेंगे। तो हमारे पास जब बाबा आते हैं, शिव का अवतरण होता है ब्रह्मा के मुखारविंद से, हमें ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान का नेत्र खोलते हैं, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। दिव्य कहते हैं ना, ब्राह्मण जन्म लेते ही सबको गिफ्ट में क्या मिल जाती है? हाँ, दिव्य बुद्धि मिल जाती है, दिव्य ज्ञान मिल जाता है, दिव्य नेत्र मिल जाते हैं, यही कहते हैं ना बाबा। तो जब ये ज्ञान हमें मिल जाता है तो अब बाबा कहता है जीवन को दिव्य ज्ञान के अनुसार संयमित करो। पहले मन दुनिया का डेटा लाके दे रहा था तो हमारी बुद्धि मटेरियलिस्टिक थी और इसलिए हमारे डिसीजन उसके आधार से हो रहे थे, हम भोगों में लिप्त थे। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं था, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। मेरा कौन है? शरीर मेरा है। मैं किस लिए हूं? मैं इसके लिए, इंद्रियों के लिए, उसी की तृप्ति में लगे पड़े हैं ना। लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया तो फिर क्या बदल गया? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं किसकी हूं? परमात्मा की हूं। किस लिए हूं? जो कार्य पिता का वो कार्य बच्चे का। पिता किस लिए आया है? विश्व कल्याण करने, उद्धार करने। तो मैं फिर किस लिए? मैं भी विश्व कल्याण करे, मैं भी विश्व का उद्धार करने के लिए। तो विश्व का उद्धार हो उससे पहले तो स्वयं का उद्धार ना। विश्व का उद्धार हो उससे पहले स्वयं का उद्धार, और स्वयं का उद्धार माना पहले अपनी बुद्धि का उद्धार। जो बुद्धि देवराज इंद्र के जाल में फंसी हुई है उसको वहां से उठा के विवेक गौतम ऋषि से कनेक्ट कर देना। क्लियर हुआ? इंद्र कौन है, अहिल्या कौन है, गौतम कौन है? क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं कि उसमें कहानी में बताया कि ये दोनों गौतम ऋषि और अहिल्या अपना दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी से जी रहे थे, वर्षों तक जिया। आश्रम में हरियाली थी, खुशहाली थी, सब कुछ था। लेकिन फिर एक दिन जीवन में घटना घटी। इंद्र को पता था कि अहिल्या अपने पति के प्रति समर्पित है। अहिल्या अपने पति की सेवा भाव से सेवा करती है, और ऐसे में क्योंकि इंद्र को चाहिए, उसको आकर्षण है, तो उसको पता है कि उसके पति की उपस्थिति में मैं इसको अपने जाल में नहीं फंसा सकता हूँ। इसलिए वो इंतजार कर रहा था कोई ऐसा दिन हो जब वो पति से अलग हो। और इसलिए कहानी में ऐसा आता है, वो नोटिस करता रहता था उसको, और नोटिस करने के कारण उसको पता था कि इसका पति सुबह भोर होते ही चले जाता है स्नान पर, लेकिन फिर लौट के भी तो आता है। लेकिन अगर भोर जल्दी कर दी जाए तो ये जल्दी चला जाएगा, तो मेरे को मार्जिन है उसके पास जाने की, और इसलिए धोखा किया उसके साथ। वो कहते कि पहले के जमाने में अलार्म क्या होता था, मुर्गा होता था। हाँ, तो मदद ली चंद्रमा की कि तू मेरे को थोड़ा मदद कर, क्योंकि चंद्रमा को भी पूछा उसने कि अहिल्या के बारे में तेरी राय क्या है। वो बड़ी सुंदरी है, वो तो मेरा तो दिल करता है वो मेरी हो जाए, तो इसको लगा अरे यही तो मेरा भी विचार है, अरे तू मेरे को सहयोग देगा क्या, तो ठीक है। तो कहते हैं चंद्र जल्दी आसमान में आया, रोशनी लगने लगी और मुर्गे का भी रोल प्ले कर दिया। तो बल्कि अंदर गौतम, क्योंकि समय तो वास्तव में हुआ नहीं था, लेकिन अचानक तो हड़बड़ी में उठ के कहते हैं क्या हो गया, इतनी भोर हो गई हमारी आंख नहीं खुली। और फिर हड़बड़ी में गए हैं, और इसको तो पता था अभी रात है, और इसने गौतम का वेश धारण करके एंट्री की, इच्छा व्यक्त की समागम करने की, और वो समागम हुआ। वहां से वो निकले, उससे पहले रियल वाले गौतम पति पहुंच गए, और जब उसने देखा तो श्राप आदि मिल गया है ना, ऐसी कहानी ना। इंद्र को भी श्राप मिला तो पत्नी को भी श्राप मिला। हमको यहां समझना क्या है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने भी बाबा का ज्ञान ले लिया, अर्थात बुद्धि को विवेक का साथ देना आरंभ कर दिया। पहले इंद्र के साथ में थे, दुनियावी ज्ञान के आधार से डिसीजन चल रहे थे, अभी बाबा के ज्ञान के आधार से डिसीजन, जिस कारण से जीवन अब संयमित है, जीवन योगी है, जीवन तपस्वी वाला है, तपस्या वाला है। लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है, क्योंकि यहां पे जब वो इंद्र आया था गौतम के वेश में, तो पति ने भी यही कहा उसको, क्योंकि उसको श्राप दिया तो वो कहती है मेरी क्या गलती है, क्योंकि ये तो आपके वेश में आया है, तो मैंने तो यही समझा ये आप हो। तो पति उसको कहता है तू ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा जो बुद्धि का देवता, विवेक का देवता, तू गौतम की पत्नी, तेरे विवेक ने काम नहीं किया, भले कोई भी भेष धारण करके आए, तेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, तू स्वयं बुद्धि के देवता की बेटी है, तूने अपने बाप की दाढ़ी की भी लाज नहीं रखी, ना अपने पति की लाज रखी, तेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आया। तो उस में बताते हैं कि क्या सचमुच अहिल्या ने उसको पहचाना नहीं था। उसमें बताते हैं पहचाना था। पहचानने के बाद विरोध क्यों नहीं किया? पहचानने के बाद विरोध नहीं करने का कारण क्या? हमको नहीं पता है गुस्सा नहीं करना है? करते हैं, ज्ञानी है ना हम लोग, मालूम है ना नहीं करना है, करते हैं। क्यों करते हैं? संस्कारों में गुस्से के बीज पड़े हैं और बीज को उचित पानी धूप मिल जाता है, काम कर जाता है। तो उसने पहचाना जरूर, लेकिन विवेक का साथ मिलने से पहले तो इसी के साथ में थी ना, इसी के आकर्षण में थी ना। तो बीज तो पड़े है ना, और इसलिए वो आकर्षित हो गई। और फिर बताया कि आकर्षित हो गई, कार्य कर डाला, और फिर श्राप मिला कि तू ब्रह्मा की बेटी होके ऐसा कैसे तूने अपना कठोर दिल बना लिया, इतनी जड़ता तेरे में आ गई, तुझे कुछ भी ख्याल नहीं आया अपने बाप की लाज की, अपने पति की लाज की, और इसलिए कहा तू जड़ बन जा, क्योंकि दिल कठोर बना के ही तो तुमने ये काम किया है। तो ये हमारे पे लागू होता है, सिर्फ एक उस समागम की बात नहीं है, जितनी भी कमी कमजोरियां हमारे अंदर है। विवेक मिल चुका है, बाबा ने ज्ञान दे दिया है, लेकिन फिर भी हम विवेक के साथ में न होकर इंद्र के साथ हो जाते, मतलब दुनियावी ज्ञान के आधार से डिसीजन लेते। और इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा बहुत परिवार वालों से अटैचमेंट नहीं होंगी तो परिवार का पालन कैसे करेंगे? फिर ज्ञान मिला है जिसको तुम मैं मेरा कह रहे हो, ये तो पात्र भर है। आज ये तुम्हारी माँ है, कल जाके किसी और की माँ बनेंगी। आज ये तुम्हारे बच्चे, कल किसी और के होंगे। ये तो तुम एक ड्रामा के अंदर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, ये तो एक कहानी है। लेकिन फिर भी हम भी कैसे इंद्र के आकर्षण में आ जाते हैं पता चलता है ना? थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, समाज के साथ चलना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो रहा है हमारा? इंद्र के जाल में, जैसे उसने पहचाना भी जरूर पर फिर भी विरोध नहीं किया, क्योंकि संस्कार पड़े हैं, संस्कारों ने काम करा दिया। तो हमारे अंदर भी संस्कार तो पड़े हैं ना, तो चाहे कितना ही बाबा रोज रोज हमें बोलता है, फिर वो अंदर वाले संस्कार हमारे फिर कहते हैं। थोड़ा सा तो समाज में, घर गृहस्थी में रहते हैं तो थोड़ा तो ये करना पड़ेगा ना हमको। ये है हमारी इंद्र के प्रति आकर्षण और विवेक, जो ज्ञान बाबा ने दिया है उससे दूरी। लेकिन फिर उस कहानी में आया कि वो तो सचमुच जब विवेक के साथ शादी कर दी गई तो उसी के साथ रहना है, तो श्राप क्या मिला उसको? जड़ हो जा, पत्थर बन जा। अब जड़ माना कोई सचमुच में जड़ नहीं बन जाते हैं, अर्थात अभी मटेरियलिस्टिक बुद्धि के साथ ही तेरा जीवन चलेगा। तो मटेरियलिस्टिक बुद्धि, भौतिकता वाली बुद्धि तो सुख नहीं प्रदान करेगी ना। आप जितना भोगों में घुसो, इच्छा है सुख प्राप्ति की भोगों में, पर मिलता क्या है? दुख ही मिलता है। तो विवेक माना भगवान ने सच्चा ज्ञान दिया कि जिस ज्ञान के आधार से स्वयं को आत्मा समझो, और तुम्हारे पास मन बुद्धि है, बुद्धि मन की स्वामिनी है, तो तुम उसको अपने कंट्रोल में रखो, ना कि तुम उसके कंट्रोल में आ जाओ। इंद्रियों को वशीभूत करके चलो, न कि इंद्रियों आपको वश में कर डाले। और फिर जब इंद्रियों को वशीभूत करके रखेंगे तब तो परमात्मा से कनेक्ट होंगे। तभी तो पहले दिन कहा ना कि क्या है मन का मौन, अंतर्मुखता क्या है, कि मन बार बार इंद्रियों रूपी गलियारे में आके खड़ा हो जाता है और बाहर के साथ लगाव है इसका, तो अंदर वाले से कनेक्शन कट। और जब अंदर आत्मा से ही कनेक्शन नहीं तो परमात्मा से क्या करने जा रहे हो कनेक्शन। तो भोग वृत्ति, एक तरफ है भोग वृत्ति, दूसरी तरफ है भगवत वृत्ति। तो भट्टी करना माना बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में आना, इंद्रियों के जाल से अर्थात इंद्र के जाल से बाहर निकलकर अंदर बुद्धि, जिस बुद्धि को विवेक मिला है उस विवेक के आधार से स्वयं की चेकिंग करना है। तो उसमें जो बताया ना कि तू पत्थर बन जा, और उसमें पत्थर बन जा माना ना पत्थर बनेगी तो ना हिलेगी ना डुलेगी ना खाएगी ना पिएगी, अर्थात पत्थर बन जाने का सीधा सा अर्थ, क्योंकि उसने कहा कि गलती स्वीकार की कि मेरे से गलती हो गई है, अब मुझे इतना कठोर दंड मत दो। तब कहा कि नहीं, तुम पत्थर बनी रहोगी लेकिन तपस्या करते रहो। और फिर श्री राम जी आएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। अर्थात ही पत्थर बन जाना मना, ये जो हम देख रहे हैं कि बाबा के ज्ञान में चलने के बाद भी, ज्ञान मिल जाने के बाद भी बार बार बुद्धि इंद्र के जाल में आ रही, बिठाओ इसको तपस्या में। 3-4 दिन की भट्टी इसीलिए थी, बिठाओ इसको तपस्या में, न हिलो न डुलो न खाओ न पियो न देखो न सुनो। और उसका मतलब बाह्य जगत से अपने आप को न्यारे करके अंतर जगत में स्व पर केंद्रित हो जाओ, स्वयं की चेकिंग करो। तो जितना जितना स्वयं की चेकिंग करेंगे उतना उतना आत्मा का तेज चेक और चेंज करेंगे तो निखरेगा। तब उसमें बताते हैं कि पत्थर की पड़ी रही और जब राम जी को विश्वामित्र लेकर आए और कहा कि विश्वामित्र ने, क्योंकि उन्होंने पूछा ये कैसा आश्रम है कि जहां हलचल नहीं कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी कहानी और फिर कहा ये आपकी प्रतीक्षा कर रही है वर्षों से, आप इसको चरण स्पर्श करके इसकी प्रतीक्षा पूरी करो। अर्थात ये हम अंतर्मुक्ता की तपस्या करें और उस अंतर्मुक्ता की तपस्या में हम अपनी चेकिंग करें कि विवेक मिलने के बाद भी मैंने कितनी गलतियां की हुई है, उस गलतियों को स्वीकार करूं। स्वीकार किया ना अहिल्या ने कि हाँ स्वामी मेरे से गलती हो गई है। तो जब हम स्वीकार करते हैं तो ऑप्शन मिलता है उस गलतियों से बाहर निकलने का। और स्वीकार कर लिया माना क्या, तो उसमें फिर ये दिखाया है कि जब राम जी आए हैं तो कहा वो पत्थर के शिला जो है पत्थर के रूप बना, नारी के रूप में शेप दिख रहा है और उसके आंखों में से झरझर करके पानी बहा है और श्री राम के चरणों में गिरा है। अर्थात इतना अपने आप से भीतर में हम बातचीत करें कि विवेक मिलने के बाद भी, सद्ज्ञान मिलने के बाद भी, बाबा की रोज रोज की पालना मिलने के बाद भी मेरे से इतनी इतनी गलतियां हुई है बाबा, और उसके प्यार में आकर उससे सारा उसको सुना दो, वो पश्चाताप कि बाबा अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, सतर्क रहेंगे हम, वरना आपको पाने का फिर क्या फायदा, वो तो भक्ति मार्ग जैसे ही चले जा रहे हैं, भक्ति मार्ग जैसे ही चले जा रहे हैं। तो वो पश्चाताप भीतर ही भीतर कि जिसके द्वारा फिर अब वो इंद्र की भोग वृत्ति से मन उपराम हो जाए और उपराम होके उस प्रभु के साथ वो कनेक्ट हो जाए। जितनी कनेक्ट होगी उतनी उसकी डिविनिटी बढ़ेगी, उतना उसका प्रकाश बढ़ेगा। तब बताया कि वो नेत्र से झरझर भी मतलब पानी बहा है और जैसे स्पर्श किया है तो एक दिव्य नारी वहां से निकली है, अर्थात वो तपस्या के दौरान उसने अपने आप को क्या किया है, उन सभी गलतियों से पश्चाताप के माध्यम से रिक्त किया उसने अपने आप को, और जब सारी बुराइयों से रिक्त कर डाला तो आत्मा तो है ही ज्योति स्वरूप ना, तो वो तो निखरेगा या नहीं निखरेगा, वो तो निखरेगा। हमको आत्मा को ज्योति स्वरूप बनाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा अपने आप में ज्योति है, प्रखर है, पावन है, लेकिन मैल जो चढ़ी है उस कारण से उसकी ज्योति का प्रकाश फैल नहीं रहा है। तो ये तपस्या के दौरान हमें क्या करना है, अपनी सारी ज्ञान में आने के बाद भी, समझ मिलने के बाद भी जो हम गलतियां किए जा रहे, चलता है चलता है चलता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बोलते हो चलता है चलता है, फिर सत्युग में जो पद मिलेगा वहां भी चलता है बोलना पड़ेगा, वहां तो नहीं चलता है हमको। हाँ तो हम कंपैरिजन कर लेते, फलाने को इतना बड़ा पद, मेरे को देखो क्या दिया है, तो अभी चलाओ ना, अभी नहीं चलाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ के समय चलता है, सब लोग तो करते हैं। सब लोगों को हम क्यों देख रहे हैं, मुझे स्वयंवर बोलते हैं ना, स्वयं का वर खुद को करना है, वर माना चुनाव करना है, फैसला करना है, मुझे अपना चुनाव खुद करना है, मुझे परफेक्ट बनना है या हर एक की तरह मुझे भी डिफेक्टेड रहना है, खुद का चुनाव खुद, इसको कहते हैं स्वयंवर, मुझे डिफेक्टेड रहना है या परफेक्ट बनना है। और तब फिर कहा कि फिर उनकी वार्तालाप भी दिखाई है कि अंदर से हम डिफेक्ट लेस हो गए हैं, कमियों को निकाल लिया है, उसका प्रूफ क्या, जो हमने उस दिन पहले दिन आपको कहा कि अंतर्मुखता, मन का मौन, माना यू टर्न ले लो, हमने पीठ घर वालों को दी है और फेस बाहर वालों को, लेकिन अंतर्मुखता माना अभी पीठ बाहर वालों को, फेस घर वालों को, यू टर्न। और दूसरा इसका यू टर्न का अर्थ क्या है, ऐसे टर्म हम ऐसे करते हैं, इसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, इसके कारण, तो हम क्या करते, परदोष, दूसरे में दोष दर्शन करते हैं। लेकिन जब यू टर्न लिया तो ये ऐसा वाला हाथ ऐसा हो गया, इधर देख दोष, मेरे जीवन में कोई भी घटना घटी उसका दोष इधर उधर नहीं, इधर चेक करूं। वही तो उसने स्वीकार किया ना, मेरी गलती हुई है। लेकिन वो कहां से पता चले कि मैंने स्वीकार किया है, मेरी गलती है? तो बताया कि दोनों का जब वार्तालाप चला है, राम का और अहिल्या का, तो वो कहती है मुनि ने श्राप क्या दिया जैसे मुझे वरदान दिया। अगर वो श्राप न देते आज आप मेरे सामने नहीं होते, तो मैं कैसे कहूं कि वो श्राप था, वो तो मेरे लिए वरदान था। ऐसे शब्द कहने का अर्थ क्या है कि उस गौतम ऋषि ने जिसने ये श्राप दिया है उसके प्रति जो मैली भावना पूरी धुल गई है हमारे अंदर, क्या होता है इसके कारण मेरे जीवन में ऐसे हुआ है ना, मैं कभी नहीं भूलने वाली इसको, तो मन में मैल को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन मैल को जब तक पकड़ के रखा है भगवान फिर नहीं मिलेंगे। भगवान आए ही तब है जब इतनी लंबी तपस्या की है, जिस तपस्या के दौरान उसने स्वयं में दोष देखा और उस दोष की सजा जो भी मिली है उसको वरदान कबूल किया और उसके बल पे मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तो ये भट्टियां इसलिए होती है, यू टर्न, तुम बदलो। अभी हम उसको बोलते तुम बदलो, इधर कर गए ना उंगली, अभी तुम बदलो। तुम बदलेंगे तो आत्मा तो साफ स्वच्छ हो जाएगी। फिर उसमें बताते हैं कि जब इतनी निर्मल, कहा कि निर्मल वाणी, निर्मल वाणी का अर्थ यही, वो जो मल वो रिवेंज का होता है ना अंदर में, वो कुछ भी नहीं, उसने तो स्वीकार कर लिया है तो वरदान हो गया मेरे लिए। कई बार जीवन में ऐसी बातें होती है जब वो घटना घटती है जिसके कारण घटी, कोई निमित्त बनता है ना, वरना होता तो अपना ही कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन उस निमित्त वाले के प्रति मन में कितना कुछ भरा हुआ होता है, तो मन में हमने निमित्त के प्रति जो कुछ भरा तो मैला तो हम अपने आप को पकड़े हुए हैं। तो मैं ही तो अपने आप को डिफेक्ट लेस कर परफेक्ट, तो मुझे जब बनाना है पकड़ के रखूंगी तो परफेक्ट कैसे बनूंगी मैं। तो ये देव अहिल्या जो भगवान कहता है मैं अहिल्याओं का उद्धार करने आया हूं, वो कोई और अहिल्या नहीं है, ये हम हैं। हम कितनी बार इंद्र के जाल में चले जाते हैं, विवेक का साथ दिया उसने हमें, दिव्य ज्ञान दिया, फिर चले जाते हैं, लेकिन फिर तपस्या करके रियलाइज करें हाँ मेरी गलती हुई है, मुझे इसके लिए स्वयं को दोष देना अर्थात इस कमी को निकाल के अन्य किसी के प्रति भी जो मेरे अंदर में निगेटिव या बस ये वेस्ट भरा है उससे भी अपने आप को रिक्त कर देना, ये है सच्ची तपस्या। तो बोलो इसके लिए मौन की आवश्यकता नहीं है, है या नहीं है? बिना मौन के ये सब संभव होगा? बिल्कुल भी संभव नहीं है। और उसमें फिर बताया कि वो जो गौतम जो उसको छोड़ के चला गया था शाप देके, लेकिन जैसे इन दोनों का वार्तालाप चला है इसके अंदर से सब, गौतम भी आके पहुंच गया, तुम तो मेरी हो, मैंने अभी दूसरे से थोड़ी शादी की है, हाँ मैं तो सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था कि तुमने जो डिफेक्ट भर लिए हैं उससे तुम खाली हो जाओ। तो विवेक हमारा इंतजार कर रहा है बाबा का ज्ञान, इसलिए रोज रोज हमने कहा कि इस भट्टी में आपको नया ज्ञान नहीं मिलेगा, सुना हुआ ज्ञान ही सुनाया जाएगा। क्यों हमने सारा मौन पे क्यों नहीं छोड़ दिया आपको, क्यों कुछ ज्ञान की क्लासेस रख दी जबकि आपको सुना हुआ है? नहीं, ये ज्ञान की रगड़ जब तक नहीं लगेगी ना तब तक ये मौन का महत्व भी नहीं समझेगा ना, अंदर में करना क्या है वो भी तो नहीं समझेगा ना, वो दर्शन भी तो नहीं होगा कि मैं कितना ज्ञान पाने के बाद भी ज्ञान के विपरीत चल रही हूं। दर्शन भी तो होना चाहिए ना पहले, इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्लास और थोड़ा थोड़ा योग ये आपको समय दिया गया, कोई अलग से कमेंट्री नहीं कराई गई। कब तक करोगे कमेंट्री? कब तक करोगे कमेंट्री? अंदर से अगर बीमारी को ठीक नहीं किया, ऊपर से क्रोसिन ले लिया, गर्म है हाथ, क्रोसिन ले लो, दो तीन दिन बुखार उतर गया, तीन चार दिन के बाद फिर आ गया, फिर खा लिया, फिर ठीक हो गया, फिर आ गया। तो कमेंट्रियां सुन रहे हैं हम, वो उस समय तक हम पॉजिटिव फ्लो में चल रहे हैं, वो अनुभव हो रहा है, लेकिन अंदर की कमियां अभी खत्म ही नहीं की है, तो वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और इसीलिए कमेंट्री हम ये नहीं कह रहे कि नहीं सुनो, जैसे ज्ञान भी कहा तो ज्ञान भी आखिर तुम पता तो चलेगा ना हमको कि ये कमियां हैं, लेकिन फिर इसके लिए भी तो समय चाहिए कि मैं एकांत में बैठकर स्वयं स्वयं से बातें करूं, स्वयं स्वयं की गलतियों को देखूं, स्वयं उसके लिए पश्चाताप करूं, नहीं तो जो पहले दिन था ना, खामियों को दान कर दो, मियां मिट्ठू नहीं बनो। अगर मियां मिट्ठू बनते रहेंगे तो खामियां का एक दिन खामियाजा बहुत बड़ा हो जाएगा, खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो पहले से ही पूर्व जन्मों का बहुत खामियाजा जमा पड़ा है, उसको ही चुकतू करने के लिए योग नहीं लगता है तो नए वाले के लिए कितना योग लगाएंगे? इसलिए नए वाले तो नहीं करे कम से कम। तो इस जन्म में नया ब्राह्मण जीवन बनने के बाद भी अलर्टनेस कितनी है उसकी चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, एकांत में बैठकर। और इसीलिए भट्टी का ऐसा टाइम टेबल आपका रखा गया कि कुछ समय योग कमेंट्री के साथ भी, लेकिन कुछ समय आप अपने रीति से मौन में रहकर स्वयं की चेकिंग करके सारी कमी कमजोरियों को स्वाहकान, खामियों को पहले समझेंगे तभी तो दान करेंगे। अभी समझा ही नहीं, इसलिए कई बार लोग कहते बहन जी पत्र में क्या लिखूं बाबा को, तो पहले चेकिंग ही नहीं की ना। आप चेकिंग करने जाओगे ना आपको दिखेगा, जब दिखेगा तो दान करोगे ना, दिखेगा ही नहीं तो दान क्या करेंगे? और चूंकि दिख नहीं रहा है तो फिर मियां मिट्ठू, और मियां मिट्ठू बनते बनते खामियों का खामियाजा बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर चलना मुश्किल। लक्ष्य क्या है? संपन्न बनना है, ऊंचाई को छूना है। पहाड़ पर जब चढ़ते हैं ना और सिर पे अगर पत्थर लेके चलो, तो जैसे जैसे चलते जाओ ऐसे ऐसे बहुत भारी लगेगा, लेकिन चलते जाओ और पत्थर को नीचे फेंकते जाओ हल्का लगेगा। तो ऊंचाई पर चढ़ना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, ऊंचाई को छूने जा रहे हैं। ये कमी कमजोरी के पत्थर को फेंकना पड़ेगा ना, उसको लेकर चढ़ेंगे तो बनेंगे क्या? तभी कमियां मिट्ठू नहीं बनो। चेकिंग गहराई से, सिर्फ अमृत वेले उठ गए, मुरली सुन लिया, ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, नुमा श्याम योग कर लिया, बाबा को गुड नाइट बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, नियम मर्यादाएं हैं, लेकिन बारीकी से चेकिंग कि इंद्र के जाल में मैं कितनी बार आके वो सब कर लेती हूँ जो नहीं करना चाहिए, जबकि विवेक मेरे को मिला हुआ है। लेकिन विवेक की आंख बंद कर लेती हूँ, वो इंद्र की वासना कामना वाली भोगना वाली आंख खुली रह जाती है। तो तपस्या माना ही विवेक का नेत्र सतत खुला रहे, और देवराज इंद्र जो भोगना वृत्ति है वासना वृत्ति है उसका नेत्र बंद करके रखें। तब गौतम अहिल्या को फिर से मिल जाता है और फिर दोनों फिर से अपना सुखद दाम्पत्य जीवन जीते हैं। तो ये भट्टी करके क्या करेंगे, विवेक के साथ पक्का गठबंधन और वासना वाली आंख उसको तिलांजलि, तब हमारी भट्टी सफल होगी। तो आज भी मार्जिन है, कल भी आप यहाँ हैं, बारीकी से चेकिंग करके बाबा को लिख के सब दे देना। और वो प्रॉमिस, तो बाबा बल भरेगा, और जितना बल भरेगा उतना पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, और बाप समान बहुत जल्दी हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में चलेंगे। ओम शांति।
तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, तपस्या स्याही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, 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 तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।